تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 15 سے. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اور اسی طرح اگلی آیت واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان اللہ کان تواب الرحیم. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمروں کو پورا کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. اور تم میں سے جو دو افراد یعنی مرد ایسا کام کریں تو ان کو ایزا دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دو آیات آپ کے سامنے رکھی، ان آیات کو سمجھنے سے پہلے وہ حالات دیکھنے پڑیں گے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں. عرب معاشرے میں دو برائیاں جو تھیں وہ عروج پہ تھیں، ایک شراب اور ایک زنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ شاید آج کے آئینے میں آپ ماضی کو دیکھ لیں. اسلام نے ان دونوں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، لیکن یہ دونوں چیزیں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دم ختم نہیں کی گئیں، بلکہ تدریج کے اصول کے تحت گریجولی ان چیزوں کو ختم کیا گیا. 13 سال مکہ کا جو دور تھا اور اس دور میں اور ان کی حالت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف جب کرنے آتے تھے تو برہنہ آتے تھے، نیکڈ، مادر پدر آزاد سمجھ لیں. جس حالت میں بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے آتا ہے اس حالت میں یہ طواف کرتے تھے. ہاں، عورتیں اپنے جسم کے اوپر شرمگاہ پر چمڑے کا کوئی ٹکڑا لگا دیتی، اور تاویل کیا تھی کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتے عبادت کے لیے. اس رسم کا خاتمہ تو سورۃ الاعراف کی آیتوں کے ذریعے کیا گیا، جو جس کی ڈیٹیلز ہم وہاں دیکھیں گے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی قوم کا مذہب، ان کا دین جو ہے وہ ان کے اخلاق کو دوسروں کے سامنے کھولتا ہے. اگر دین کے اعتبار سے، دین کے ناطے سے اتنی بے حیائی ہو چکی ہوگی تو پھر سوچئے کہ ذرا باقی حالات کیسے ہوں گے. نہ گفتہ بے حالت تھی، پیدا ہونے والے بچوں کے نسب کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. نکاح کے نام پر بے حیائی اور بدکاری کے انتہائی گھنونے قسم کے طریقے روا تھے. اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں گی. اب ہوا کیا کہ مسلمان اسلام کے نام پہ جمع ہونا شروع ہوئے. بالکل اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیے، اور وہاں لے جانا مشکل ہو تو آج کے دور کا کوئی ایسا ملک تصور میں لے آئیں کہ جہاں کفر بھی ہے اور گندگی بھی ہے، شراب بھی ہے اور زنا بھی ہے، اور آپ نئے نئے وہاں آ گئے. آپ بالکل نئے تھے وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری برائیاں دیکھیں تو ایک دم ان کے اوپر اس طرح سے کفر اور حرام کے فتوے نہیں دیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اصل نقطے سے ہٹ کر دوسری چیزوں میں کھو جائیں. 13 سال تک مکی زندگی میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا. مکی صورتوں میں اشارتاً زنا کی حرمتیں اور اس کی برائیوں کا تذکرہ آنے لگ گیا. جیسے سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، دیکھو زنا کے قریب نہ جانا. لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا تھا کہ زنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کوئی قانونی چارہ جوئی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کی گئی، کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھایا گیا. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، باقی مسائل کی طرح اب اسلام نے اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو آیتیں دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16، یہ اس سلسلے کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دم زنا کی سزا کو سختی کے ساتھ لاگو کرنے اور اس کو اس انتہائی شکل میں جو سورت نور کی آیتوں میں ملتی ہے پیش کرنے کی بجائے ابتدا میں یہ حکم دے دیا کہ ایسی عورتیں جو ایسے کام میں ملوث ہوں تو ان کو باہر نکالنے کی بجائے گھر کے اندر لے آؤ۔ آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی سوسائٹی میں برائی کو ختم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہوتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس ساری چیز سے ہمیں اپنے عمل کے لیے رہنمائی ملے گی۔ سمجھ نہیں آتا بچوں کو کہاں لے جائیں، کیا کریں، یہ ہے نا جملے لوگوں کے، گندگی میں رہ رہے ہیں، کیچڑ میں رہ رہے ہیں، کریں کیا، کس طریقے سے اسلام آتا ہے، اسلام نے یہ بھی طریقہ ہمیں سکھا دیا۔ تو آئیے ذرا آیتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ واللاتی، اور وہ دو عورتیں یا بہت ساری عورتیں، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے اللاتی، اللذین کا لفظ تو آپ بہت پڑھتے ہیں نا، وہ جمع کے لیے آتا ہے، بہت سارے مرد عورتیں، لیکن اللاتی ایک عورت کے لیے آتا ہے، اور اللاتی جو یہاں لفظ ہے لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ بہت قابل غور ہے، یہ ایک سے زیادہ عورتوں کو ثابت کر رہی ہے۔ تو اس سے عام معنی کیا نکلتا ہے، وہ عورتیں۔ اسی لفظ پہ غور کرتے ہوئے پھر اس تفسیر کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، کہ اس کو اگر ہم دو عورتوں کے رنگ میں لیں تو مطلب ہوگا کہ وہ عورتیں یا کون، یا تین الفاحشت من نسائکم، جو بدکاری کریں تمہاری عورتوں میں سے۔ تمہاری عورتوں سے مراد جہاں مسلمان عورتیں ہیں۔ تو اس ایک لفظ سے دو باتیں پتہ چل گئیں، نمبر ایک کہ دو عورتیں یہ کام مل کے کریں، جس کو آج کے دور میں لیسبین ہونا کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو سحاق، سین، ہا، الف اور قاف، لفظ اسحاق سے پہلے الف گرا دیں تو سحاق بنتا ہے، سحاق کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کو مفسرین نے دو طرح سے واضح کیا، ایک تو اس رنگ سے کہ وہ دو عورتیں یہ کام کریں، یعنی جو عورت عورت کے ساتھ ایسی فحش حرکتیں کریں کہ جس کو الفاحشہ کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور الفاحشہ کا لفظ جو ہے فحش سے ہے، کھلی برائی کو کہتے ہیں، لیکن عموماً جب ال کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ یہاں ہے تو پھر اس سے مراد زنا ہوتا ہے یا بدکاری۔ ویسے فاحشہ ہر اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، اور دیکھا جائے تو زنا کے اوپر یہ تعریف بالکل فٹ ہوتی ہے کہ زنا صرف کسی ایک انسان کا اپنا ذاتی عمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر گندگی پھیلتی ہے۔ کون سی عورتیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اس سے پھر دو معنی مراد ہیں، کم سے مراد مسلمان ہے، نساء سے مراد مسلمان عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسرا اس سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں۔ نساء کا لفظ بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں دو باتیں کیا ہوئیں، کہ کوئی مرد اپنی بیوی میں یہ برائی دیکھے، مراد یہ کہ اس بیوی کا یا تو دوسری کسی عورت سے تعلق ہے، یا پھر واللاتی کو عام یعنی جمع کے سینس میں لے لیں تو مراد ہے زنا کرنے کرانے والی عورتیں، پھر اس میں عورت سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عرب معاشرہ اس میں یہ چیز عام تھی، کچھ عورتیں پیشہ وارانہ طور پہ جسم فروشی کا کام کرتی تھیں، ایسی عورتوں کو لونڈیاں کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے باہر مخصوص قسم کے جھنڈے لگائے ہوتے تھے، اس لیے عرب کلچر میں ان کو جھنڈے والیاں کہا جاتا تھا۔ یہ بالکل وہی ہے جو آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو برے صغیر پاک و ہند میں ایسی خواتین کو کوٹھے والیاں کہا جاتا تھا، یا طوائف زادیاں کہا جاتا تھا، یا بازار حسن کے نام سے کچھ جگہ معروف ہیں شہروں میں۔ تو بالکل یہ مخصوص عورتیں ہوتی تھیں، اور یہ فعل اتنا عام ہو چکا تھا کہ شریف گھرانوں کی چند عورتوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو یہ برا بھی نہیں لگتا تھا، معیوب ہی نہ رہا تھا، اتنی عام چیز تھی، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا، اور جس کو ضرورت ہوتی وہ ایسی عورتوں کے پاس جاتا اور اپنی خواہش کو، اور یہ بہت عام تھا، بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے بھی یہ کام کرواتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا نام ہم پیچھے سورۃ آل عمران میں کئی بار سن چکے، دل کا منافق تھا، نام کا مسلمان تھا، یہ اپنی لونڈیوں سے خاص طور پہ یہ کام خود کرواتا تھا۔ اس کی حرمت سورۃ نور میں جا کے آ گئی کہ اپنی لونڈیوں کو اس برے کام پہ مجبور نہ کرو۔ خیر اب ہوا کیا کہ یہ بات عام ہو گئی، اب جب ہر گھر میں یہ چیز عام ہوگی تو مردوں کی بیویوں میں بھی تو عام ہوگی نا۔ جب عورتیں اس قسم کی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں نا تو مرد بھی आंखें बंद कर लेते हैं ये सोचकर कि घर का माहौल खराब ना हो। अब क्या टोकें, अब क्या रोकें इनको। नतीजा क्या हुआ कि ये बुराई घर घर में फैल चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने इब्तदाई तौर पे यहाँ हुक्म दिया, अगर तुम में से कोई ऐसा काम देख ले अपनी बीवी में या दूसरी मुसलमान औरत में तो क्या किया जाएगा, फस तशखिदो, बस तलब करो। शाहिदा का लफ्ज़ पीछे गुजर चुका, यहाँ अलिफ सीन ता साथ लग गया। अलिफ सीन ता में तलब पाई जाती है, बस तलब करो यानी मांगो, बुलाओ। अलई हिन्ना, उनके खिलाफ, उनके इस फेल के खिलाफ तलब करो क्या, अरबअतम मिनकुम, चार तुम में से। कौन ये नहीं लिखा, लेकिन हदीस से पता चलता है कि चार मर्द तुम में से। अरबी जुबान में अरबअता का लफ्ज़ जो है ना, ये गिनती के लिए आया है। इस लफ्ज़ को कहते हैं अदद, उर्दू में भी बोलते हैं ना अदद। दो चीज़ें हैं, मसलन मैं आपके सामने बोलूँ दो कुर्सियाँ, तो दो का लफ्ज़ क्या है, अदद, और कुर्सियाँ क्या है, मादूद। ग्रामर का एक पूरा टॉपिक है अदद और मादूद। अदद वो है 1, 2, 3, 4, 5, और मादूद क्या है, कुर्सियाँ, मेज़, बच्चे, जो भी चीज़ें आप गिनते हैं। यहाँ अरबअतम मिनकुम कह के बात छोड़ दी, बस तुम में से चार गवाह तलब करो, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो गवाह मर्द हो सकते हैं कि औरतें हो सकती हैं या दोनों को लिया जा सकता है। तो दो तरीके से यहाँ ये साबित हो रहा है कि मर्द होंगे। इस्लाम में चूँकि जिना की सज़ा बहुत सख्त है, जिसको सूरत नूर में ख़ास तौर पर वाज़ किया गया, लेकिन इसकी शरायत उससे भी ज़्यादा सख्त है। किसी को बस जिना के शुबे में सज़ा दे देना या उसको पकड़ के ऐसे इल्ज़ाम लगा के सज़ा देना, ये जायज़ नहीं है। दो सख्त शरायत हैं, जिसमें एक शर्त क्या है कि चार हों, और चार लोग किसी बुरे काम को होता अपनी आंखों से देखें। क्या ये सज़ा देने की कोशिश है या बचाने की कोशिश है? बचाने की कोशिश है। किसी एक ने जाके कह दिया कि मैंने फलां को जिना करता देखा है, तो उसको कैद में कर लिया जाएगा, तीन और लाओ। तीन ले आएगा तो उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, और तीन नहीं लेके आएगा तो इस एक को 80 कोड़े लगेंगे तोहमत के, चाहे उसने अपनी आंखों से भी देखा हो। इतनी प्रोटेक्शन इस्लाम ने, इंतहाई हिफाजती इकदाम किए कि लोगों को इन बुराइयों पे सजा ना मिले। चार लगा दी शर्त, और बाज़ कहते हैं कि चूंकि दो लोग इसमें मुलव्वस है ना, औरत और मर्द, तो आम कामों पे दो ही गवाह होते हैं ना, जैसे निकाह पे या कर्ज पे या लेन देन पे, तो यहाँ भी चार जो है वो दो औरत के लिए और दो मर्द के लिए। दूसरी शर्त जो इस्लाम ने लगाई अरबअतम मिनकुम में, वो ये है कि जिना के केस में औरत की गवाही तस्लीम नहीं की जाती। ये मौज़ूम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, दो औरतों की गवाही में इशारतन मैंने तस्करा किया था वहाँ आपके सामने कि जिना के केस में कोई औरत गवाह नहीं बन सकती। ये हदीस से भी पता चलता है। यहाँ देखिए अरबअतन मुअन्नस है, ताए तानीस है ना, तो अरबी ज़ुबान का एक असूल है कि अदद और मादूद में जब शुरू के अदद होते हैं, जैसे 1, 2 से लेकर तकरीबन 9 तक, तो अगर अदद मुअन्नस है ना, तो उसके आगे मादूद जो है वो मुज़क्कर होगा। मतलब जिस चीज़ को गिना जा रहा है अगर वो मुज़क्कर है तो उससे पहले मुअन्नस होगा, और अगर गिनी जाने वाली चीज़ मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होगा। अब आप में से बहुत सारे हैरान होंगे ये क्या कहानी हो रही है, तो यहाँ ये जुमला याद रखें कि उर्दू में तो हमारी गिनती ऐसी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, 5, सब पे चलता है। हम दो कुर्सियाँ भी कह सकते हैं और दो मेज़ भी कह सकते हैं, हालांकि हमारे यहाँ कुर्सी मुअन्नस है और मेज़ मुज़क्कर है। अरबी ज़ुबान में गिनती मुज़क्कर और मुअन्नस के अलग होती है। यहाँ लफ्ज़ अरबअतन है, ये मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर क्या है, अरबा, आइन के साथ, जैसे रुबा लिखा होता है ना रुकू के बाद चार चार हिस्से जो होते हैं। तो बहरहाल अरबअतन का लफ्ज़ चूँकि मुअन्नस है तो इसके बाद मुज़क्कर आना था यानी मर्द। आप इन सारी बातों को भूल के सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि जिना की किसी को सजा दिलवाने की दो इंतहाई कड़ी शरायत हैं। नंबर एक, चार लोग गवाही दें, और चार तभी देंगे जब खुले आम महफिलों में ये अमल होगा। वो क्लब भी हो सकते हैं, वो नाइट क्लब हो सकते हैं, वो गैम्बलिंग्स हो सकती हैं, और अल्लाह माफ़ करे हद से बड़ी भी पार्टियां भी हो सकती हैं कि जिसमें इंसान इतना बहक जाए कि पता ही ना चले कि कौन किसकी बीवी के साथ है। वहाँ अगर कोई चार लोग गवाही देंगे फिर सज़ा मिलेगी, वरना ऐसे ही नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि हम मुसलमानों की कम इल्मी की वजह से और जज्बाती बातें आम करने की वजह से वेस्ट में एक शोर मच जाता है, और वो क्या है, इस्लामी सज़ाएं इंसानियत सोज हैं। सुना मैं ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, ये सख्त सज़ाएं हैं, और उसमें जिना की सज़ा पे बहुत सख्त बात करते हैं कि इसमें तो स्टोनिंग टू डेथ की बात भी कर दी, रजम की बात। तो याद रखिए कि इस्लाम ने ऐसी सज़ाएं देने से पहले कि जिसके अंदर इतनी सख्ती बरती जाए, पहले कुछ और स्टेप लिए, और वो क्या लिए कि फ़ाइन शहीदू, फिर अगर वो गवाही दें, कौन, चार लोग गवाही दें कि इस औरत ने बुराई की है, तो अब क्या सज़ा दी जा रही है, फम सिकू हन नफिल बुयूत, अब औरतों को घरों में रोक लो, कब तक, हत्ता या तवफ़ा हन्नल मौत, मौत आ जाए, यानी मरते दम तक घर में ही रहेंगी। या दूसरी सूरत क्या है, औ यज अल्लाहु लहुन नसबीला, या फिर अल्लाह ताला उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। और सबील की तफसीर जो है वो मुफस्सरीन से और ख़ास तौर पर इब्ने अब्बास से मिलती है कि इसमें इशारा किया गया है सूरत नूर की इब्तदाई आयतों की तरफ, और वो क्या था कि अर्रजमुल सैयब, जो शादीशुदा औरत अगर जिना करे या मर्द जिना करे तो उसको रजम किया जाएगा, वल जल्दुल लिल बिकर, और कोड़े लगाना उसको जो के कमारा हो। अपने लफ्ज़ों में इस बात को समेट देती हूँ कि इस्लाम ने जिना की सज़ा जो इस वक्त है, इस वक्त रिसेंट जिस पे अमल होगा, वो क्या है कि जब किसी मर्द या औरत का जिना चार लोगों की गवाही से साबित हो जाए, चारों गवाही दें और वो चारों मर्द भी हों, और औरत को जिना के मुकदमात में इसलिए भी मुलव्वस नहीं किया गया कि जब ऐसे केसेस अदालतों में जाते हैं तो बहुत खुले सवाल होते हैं, जिना के फेल को अपने लफ्ज़ों में बयान करना होता है। एक मौके पे एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने इस फेल का इकरार किया था, मैंने ये गुनाह किया, मायज उनका नाम था, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उससे इतने खुले सवाल पूछे थे कि सहाबा कराम कहते हैं कि हमने आपकी ज़ुबान से कभी ऐसी बातें पहले नहीं सुनी थी। लेकिन आपने पूछा, क्या तुम सिर्फ बोसा देने को तो जिना नहीं समझ रहे, क्या सिर्फ उस औरत को हाथ लगाने को जिना तो नहीं समझ रहे, क्यों, इसलिए कि आप सज़ा से बचाना चाहते थे। तो लिहाजा औरतें अगर ऐसे सवाल अदालत में जाके सुनेंगी तो क्या होगा, शर्म और हया के ख़िलाफ़ है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिना के जो केसेस होते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं वो मुजरिम और गुंडा टाइप होते हैं, अगर कोई औरत अदालत में जाके उनके ख़िलाफ़ गवाही दे तो पता चले बाद में वो उसको उठवा लेंगे, तो औरत चूँकि जज्बात में आ जाती है, फिर औरत इमोशनल इतनी होती है, हो सकता है पहले सज़ा दिलवाने के लिए जाए कि हाँ मैंने ये अमल करते हुए देखा, और वहाँ उसको उन पर तर्स आ जाए कि हाय अब मेरी इस गवाही के बाद तो इनके ऊपर इस तरह हद लगेगी, तो कह दे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा ऐसे नहीं, जो ही उसने अपनी बात बदलनी है तो अब उस औरत को 80 कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह जिना पे 100 कोड़ों की सज़ा आती है, इस तरह उसकी तोहमत या उसकी ब्लेमिंग पे 80 कोड़ों की सज़ा है। ठीक है, ये सारे मसले भी छोड़ दें आप, क्योंकि ये पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ सिर्फ इस आयत का हुसन देखिए कि इस्लाम ने कितने खूबसूरत तरीके से इस्लाह की, वहाँ के माशरे में ये चीज़ें आम थी, तो अल्लाह ताला ने 13 साल तक सहाबा कराम के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उनकी ज़ाती इस्लाह की फ़िक्र लगा दी कि हाल क्या हो जाता था कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो वो पलट के आता। जैसे कि अभी इशारा हुआ, एक सहाबी थे मायस असलमी, उनसे जिना हो गया और फ़ौरन नबी सल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी मेरे से जिना हो गया, मुझे हद लगा दें, क्यों, इसलिए कि फ़िक्र थी ना कि अगर इसी हाल में मारे गए तो कल पकड़ होगी। इसी तरह गामदिया कबीले की एक औरत है, उसका वाकया बहुत दफ़ा आपने तौबा के ज़िमन में सोचना होगा कि ना सिर्फ ये कि उससे जिना हुआ बल्कि प्रेग्नेंट भी हो गई, तो उसने भी आके अल्लाह के नबी के सामने रखा कि मुझे पाक कर दीजिए, तो आपने कहा नहीं, तुम अभी आपने अवॉइड किया, सुनना पसंद भी नहीं की उसकी बात, लेकिन जब उसने इसरार किया और कहा अब तो बच्चा भी पेट में, तो कहा कि बच्चा पैदा होगा तो फिर आना, उसका क्या कसूर है, फिर बच्चा पैदा हुआ उसको लेके आ गई, कहा अब तू मर जाएगी इसको दूध कौन पिलाएगा, जो इसको दूध पिलाओ और जब खाने पीने के काबिल होगा फिर लाना, اور چند ماہ کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کہ وہ عورت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یہ کون سے جذبے تھے؟ یہ پاک کرنے کے جذبے تھے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ اسلام نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایک بہت بڑا کام کروانا تھا, ان کو خیر الامت کے درجے پہ فائز کرنا تھا, کن تم خیر امت والی بات تھی, تو ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے. لہٰذا مکہ میں ان کی ذاتی تربیت پہ بات ہوئی, تزکیہ ہوا, ان کی پیوریفیکیشن ہوئی. اب جب پیوریفیکیشن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں بھی اس قسم کے لوگوں کو سامنے رکھا. اب دیکھیں, جب بھی کبھی اصلاح کا کام شروع ہوگا, وہ کل ہے یا آج ہے, دو قسم کے لوگ سامنے آ جائیں گے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے جرات مند ہوتے ہیں, بڑے ووکل قسم کے, برملا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے, اس کو برا کہیں گے, چاہے نام بدل لیا جائے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً لوگوں کے اوپر جا کے حدیں لگا دی جائیں, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ بہت زیادہ ان چیزوں میں اسٹرکٹ تھے, وہ بہت زیادہ اس کو محسوس کرتے تھے. لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ تھوڑے ہوتے ہیں ہر دور میں, آج بھی تھوڑے ہیں, آج آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے, کل بھی تھے لیکن تھوڑے تھے. ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے, اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ خاموش رہو, سائلنٹ میجورٹی, کسی کو کچھ نہ کہو. یہ برا سمجھتے ہیں ان برائیوں کو, ان کا نہیں دل چاہتا ہماری عورتیں ان کاموں میں پڑھیں, ہماری اولادیں پڑھیں, لیکن معاشرے کے خلاف جانے سے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے وقت کے رواج کے مطابق اپنے آپ کو نہ رکھا تو ہم پیچھے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا دو تہائی حصہ لوگوں کی اصلاح میں لگا. آپ کو حیرت ہوگی جب آپ سیرت کو برملا پڑھ کے دیکھیں گے, حیرت ہو جاتی ہے کہ 23 سال کی نبوی زندگی میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عشر, جہاد, یہ جو بڑی بڑی نیکی ہیں نا, ان پہ تو صرف چند سالوں میں بات ہوئی. 8-5-6 سال میں یہ ساری چیزیں سکھائیں. 16-17 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگائے وہ اپنے ساتھیوں کی تربیت کے لیے لگائے, اس لیے کہ لوگوں کی اصلاح کا کام سب سے مشکل کام ہوتا ہے. لوگ بدلنا نہیں چاہتے, گھڑی ہوتی ہے نا, آتے ہیں. قرآن پاک کو کھول کے دیکھ لیجئے, ماشاءاللہ ابھی آپ تو آغاز میں ہیں نا, آگے جائیں گے, اللہ آپ کو آخر تک لے کے جائے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا دو تہائی حصہ, یعنی 30 پاروں میں سے اگر آپ 20 پارے الگ کر دینا تو ان کا ٹاپک اخلاقی اصلاح ہے, مینرز, ایٹیکیٹس, باتیں, تعلقات, غصہ نہ کرو, زنا نہ کرو, عزت کی حفاظت کرو, آنکھوں کو جھکاؤ. پھر کہیں باہر جا کے بات کرنے کی ضرورت پڑی کہ اب اس کو اپلائی کیسے کرو. تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر لگا دی جائے. جب لوگ اپنی اصلاح کرنے پہ قابل ہو جائیں, کرنے لگ جائیں, تو پھر دوسروں کو روکنے کا جذبہ بیدار ہو. جب دوسروں کو روکنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے, پھر تیسرے درجے پہ قانون سازی ہوئی. آج ہمارے ہاں آوازیں اٹھتی ہیں, اسلامی سزائیں لگا دو. بعض تو کہتے ہیں, اب تو میں نے کبھی آواز بھی نہیں سنی, شاید میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے اتنا رہا خبروں سے اور ان چیزوں سے, لیکن پہلے جب اپنے ملکوں میں ہوتے تھے تو یہ کبھی کبھی اخباروں میں کسی بھی مسلخ یا کسی بھی امت کا درد رکھنے والے کا ایک مطالبہ ہوتا تھا, پاکستان میں شریعت نافذ کرو, اسلامی سزائیں لے کے آؤ. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ پورا باہر کا میڈیا اس چیز پہ مصروف دکھتا ہے کہ اسلامی سزائیں انسانیت سوز ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم پہلے ہی سورت نور والی آیت لوگوں تک پہنچا دیں گے نا, تو لوگ تو کہیں گے اسلام بڑا سخت ہے, اور اسی سے بدنامی کی بات ہوگی, اور اسی بیرونی دباؤ سے گھبراتے ہوئے لوگ ان موضوعات پہ بات ہی نہیں کرتے. دیکھا جائے تو جو حالات کل مکہ میں تھے نا, آج بھی وہی حالات ہیں. اس وقت بھی ہمیں اپنے چاروں طرف بڑے بڑے سمندر دکھ رہے ہیں برائیوں کے, اور آنے والی نسلوں کے لیے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں. کہ جہاں اتنی چیزوں کو اب قبول کر لیا گیا کہ کوئی بات نہیں, لڑکے اور لڑکی کی دوستی ٹھیک ہے اور ان کی بات چیت میں کوئی حرج نہیں اور لیونگ ٹوگیدر, کل نہ جانے اور کیا کچھ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں نا تو لوگوں کی مطلب اصلاح کریں آج کے دور میں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں اور اپنے مردوں کی ذاتی اصلاح, ان کے تزکیے کی کوشش کرنی ہے. آنکھوں میں حیا بھریں, ان کو ان برائیوں کی شدت پتہ چلے کہ یہ سب کیسے ہوں گی. جب وہ خود اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو جائیں تو ساتھ ہی پھر ان کے دل میں یہ دائیہ پیدا کریں کہ اب اپنی دوستوں, اپنے ساتھیوں, اپنے ساتھ رہنے والے, اپنے ان لوگوں کو اپنے اپنے لیول پہ تبلیغ کریں, فرینڈس میں, کزنس لیول پہ, जहाँ भी कोई रहता है वहाँ एक दूसरे को इस बुराई से रोकें। जब लोगों का जहन तैयार हो जाए तो लोगों के बुराई के मामले में नज़रियात बदले। लोगों को पहले बुराई बुराई तो लगे। देखिए, जब बुराई बुराई लगती नहीं है ना, तो उसकी सज़ा वाकई इंसानियत से उस लगेगी। इस वक्त हमारा काम क्या है कि लोगों के अंदर जो वो गंदगी की खू आ चुकी है ना, उसको बदलें। सफाई पसंद जो बंदा होता है ना, उसको एक तिनका भी पड़ा हुआ चुभता है, और जो बेचारा गंदा मंदा होता है वो कहता है कुछ भी नहीं होता, सब साफ है। मक्का में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को आंखों देखी बुराई देखने के बावजूद कहा कि खामोश रहो, अभी कुछ ना करो। आप वहां भी एक्शंस ले सकते थे, लेकिन आप जज्बाती नहीं थे। क्या कहा कि पहले अपने साथियों के अंदर इसके खिलाफ नफरत तो पैदा करो, तुम देखो इस काम के अंदर। जब नफरत पैदा हुई, उनके परसेप्शंस चेंज हो गए। ये मुश्किल काम होता है, हिम्मत तलब काम है। जब ये हो गया तो फिर मक्का में आने के बाद अब मदीना में ये हुक्म दिए जा रहे हैं कि अगर कोई मर्द अपनी ही बीवी या अपने ही घर वालों को बुराई में मुब्तला देखे तो क्या करे, बाहर भागेगा? हरगिज नहीं। बड़ा प्यारा असूल है इन आयतों में। और वो क्या कि पहले घरों के अंदर इसलाह करो, ऐसी गंदगी को घर में ही रोक लो। गंदी औरत बाहर जाएगी तो बाहर का माहौल खराब होगा ना। तो कहा फमसिकूहुन्न फिल बुयूत, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप अपने ट्रैश को डंप करते हैं, गार्बेज जो होता है उसको फैलाते नहीं हैं। इसलिए बताया गया कि अगर कोई अपने घरों में, कोई मर्दों में, कोई औरतों में, कोई बीवी अपने शौहर को देख ले, शौहर बीवी को के बारे में कोई देखे, माँ बाप अपने बच्चों में कोई ऐसी खराबी देखें, कुछ भी हो, तो इसको बाहर ना लाओ, अंदर ही रहने दो। इसलिए कि ज़रूरत इस बात की है कि पहले ख़ानदानी तरीके पे इस्लाह की जाए। अल्लाह ताला ने इस मामले में हुकूमत की सतह की बजाय ख़ानदान की सतह पर सज़ाओं का आगाज़ किया। इनको घरेलू टॉर्चर दो, इनको अंदर रख के समझाओ। अगर कोई गंदगी करे और उसको बाहर निकाल दे तो बाहर का माहौल गंदा होगा ना, घर में तो गंदगी है, आ गई तो नतीजा क्या निकला, उसको घर में रोक लो। उनको अपने आप को बचाने की कोशिश करो, उनकी इसलाह की कोशिश करो। और अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ ये कानून बता दिया कि जो लोग अपने घरों में बुराइयों को डंप करके ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाहर नहीं होता। जब घरों की सतह पे घराने पाकीज़ा हो जाएंगे, बच्चों के अंदर से ये चीज़ें निकल जाएंगी, गंदगी फैलाने वाली सारी चीज़ों को हम अपने घरों से एक तरफ कर देंगे, तो आप देखेंगे कि फिर इतनी खराबी नहीं आएगी। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने अपने घरों के अंदर तो वो सारे साजो सामान जमा कर दिए जिससे गैरों की दुनिया में बुराई फैली, हमारी नस्लों में भी आ रही है। हम भी उसको देख के अब इतने यूज्ड हो गए, हम कहते हैं सोके। पहले देखिए, कोई फिल्म चलती भी थी ना तो रिमोट कंट्रोल माँ बाप के हाथ में होता था, बच्चे भी आंखें झुका लेते थे और घर वाले उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते थे, ये बच्चों के देखने वाली चीज़ नहीं है। अब तो मैंने देखा है कि बच्चे भी बैठे होते हैं और बच्चों को भी पता होता है कि ये चीज़ आम है और माँ बाप को भी आम है, और अनअटेंडेड जब ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाए, आप कैसे कह सकते हैं कि फ़लां बड़ा अच्छा है और फ़लां बहुत सीधा है? शैतान तो सीधा नहीं है, फ़लां वो तो भोला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि आज के दौर में ये सारी बुराइयां रुकें, तो उसके लिए हमें भी अपने घरों से इस्लाह की कोशिश शुरू करनी होगी और फिर कहीं बाहर होगी। बेहयाई को फैलाना जो होता है ना, ये और ही गंदी चीज़ होती है। बुराई को शोहरत देना भी अच्छा नहीं। सूरत नूर पे तो इस पे और भी ज़्यादा वजाहत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि अपने घर के ट्रैश को भी अगर बाहर फेंकते हो तो बांध के फेंकते हो ना, तो फिर ये बातें तो उससे भी ज़्यादा गंदगी की बातें हैं। लिहाजा शुरू में जिना की सज़ा अनाउंस नहीं की, बल्कि घरों में रखने का हुक्म दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जब फैलाया गया तो चार गवाहों की कैद की शर्त लगाई गई, और इसके बाद फिर उसको आगे ले जाकर अल्लाह ताला ने आसानी के साथ दूसरों तक पहुंचा दिया। जब तदरीज के साथ ये कानून आए, कोई आवाज़ नहीं उठी मक्का और मदीना में कि ये इंसानियत सोज है और ख़राबी की बातें हैं और दिस एंड दैट है। बिल्कुल आज भी यही चीज़ होगी तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर दूसरी चीज़ देखिए कि इस आयत के अंदर अगर वल्लातियातीन अल्फाखिशत मिन निसाइकुम को, और साथ ही अगली आयत को भी ले लेते हैं क्योंकि अहकामात तकरीबन एक ही जैसे हैं। अगली आयत में देखिए वल्लज़ानी, ये वल्लज़ान जो ना, ये अल्लज़ी का तस्निया है। सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि अल्लज़ीना का लफ्ज़ आप बहुत पढ़ते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना जो है ना वो जमा है, बहुत सारे लोग, तो दो के लिए बोलेंगे तो वल्लज़ान और दो, ठीक है, वो दो जो। अब यहाँ वल्लज़ान से लोग एकदम समझ लेते हैं ये ज़ानी का लफ्ज़ है, ये ज़ानी नहीं है, ये इसम मौसूल है, जैसे अल्लाती है ना पीछे, इसी तरह अल्लाजान है, मुराद बस इससे ये ले लीजिए कि दो मर्द, यानी वो दो मर्द, दो जानी, दो मर्द भी हो सकते हैं, दो एक औरत और मर्द भी हो सकते हैं, तो ये सब लोग क्या करें, या ती या निहा आए इसको। हा से मुराद क्या है, जिना, फाहिशा। और मर्दों के लिए दो मर्दों की बात होगी तो लिवातत, होमोसेक्सुअलिटी की बात है, दो मर्द आपस में बुराई करें, या मर्दों की आदत खराब हो चुकी है, वो बुरे कामों में आ गए, तो क्या करें, फआजूहुमा, तो इन दोनों को ईजा दे दो। ईजा देने में क्या अब शरायतें, कितनी ईजा होगी, तकलीफ देने की क्या बात है, इसको मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ तरह से समझा। कुछ रिवायात आपके सामने रखती हूँ जिससे आप देख लेंगे इस बात को कि ऐसे काम करने वालों को क्या सजाएं दी जानी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा की एक रिवायत को अपने लफ्ज़ों में आपके सामने रख देती हूँ। नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से 7 किस्म के लोगों पर 7 आसमानों के ऊपर से लानत भेजी है, शिद्दत है, और इनमें इन 7 में से एक पर 3 3 दफ़ा लानत भेजी है और बाकी पर 1 दफ़ा। फरमाया कौन, कैसे? फरमाया मलून है, यानी लानत है उस शख्स पर जो शख्स कौम लूत वाला अमल करता है। लूती फेल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि कौम लूत इस अमल की मूजिद है, इस काम को बनाने वाले, शुरू करने वाले कौम लूत के थे, इसलिए फिर इसी से लिवातत है। और ये मर्द के साथ बीवी वाला ताल्लुक़ रखना, यानी मर्द के साथ मर्द का ताल्लुक़ रखना। फरमाया मलून है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है, फिर फरमाया मलून है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है। ये तरगीब और तहरीब की रिवायत है। एक और दूसरी रिवायत भी इसी हवाले से अबू हुरैरा ही से मिलती है। फरमाया 4 आदमी सुबह के वक्त अल्लाह जल्ला शानु के गज़ब में होते हैं और शाम को भी अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होते हैं। मैंने पूछा वो कौन लोग हैं, तो आपने फरमाया वो मर्द जो औरतों की तरह बनते हैं, यानी अपने हाल हुलिये से, अपनी आदात से, शौक से वो औरत बनते हैं, और वो औरतें जो मर्दों की तरह बनती हैं, और वो शख्स जो जानवर के साथ गैर फितरी हरकत करता है, और वो मर्द जो मर्द से शहवत पूरी करता है। यहाँ देखिए जानवर का लफ्ज़ आ गया ना, यही है असल में बेहयाई की बात, कि जब एक इंसान फितरत की हद को तोड़ता है ना, फिर वो रुकता नहीं है। अल्लाह ताला ने नेचुरल नीड्स के तौर पर जैसे खाने पीने की हाजात थी, रेस्ट रूम को यूज़ करने की तरीके सिखाए, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिनसी ख्वाहिश के लिए मर्द को औरत और औरत को मर्द का जोड़ा बना दिया और उनको निकाह के बंधन में बांध दिया। लेकिन पहले दौर में हुआ क्या कि लोगों ने पहले निकाह को मुश्किल किया, फिर निकाह की ज़रूरत ना समझी, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप हो गई, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर जब सब कुछ बगैर शादी के मिल गया तो अब शादी की ज़रूरत ही ना रही। नतीजा क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद फिर औरत और मर्द का भी दिल भर गया, समथिंग न्यू का शो शौक है ना आज के दौर में। फिर क्या हुआ, फिर औरत ने औरत के साथ, मर्द ने मर्द के साथ बुराई की, अब उससे भी दिल भर गया और अब जानवर भी इंसानों की शहवत और उसकी हवस से दूर ना हुए, तो ऐसे सब लोग जो हैं ये अल्लाह की रहमतों से दूर हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको तुम कौम लूत की तरह गैर फितरी हरकत करता हुआ देखो तो फाइल और मफ़ऊल दोनों को मार डालो। यानी आज के दौर में अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो होमोसेक्सुअल्स दोनों की सज़ा कत्ल होगी। इसी तरह हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हिशाम बिन मल, इन्होंने अपने दौर में होमोसेक्सुअल्स को आग में जला दिया था, यानी इन्होंने जलाने की बात पेश की थी। एक वाक्य आता है कि खालिद बिन वलीद ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख़त लिखा कि यहाँ अरब के एक इलाके में एक मर्द है जिसके साथ औरतों वाला काम किया जाता है। हज़रत अबू बकर ने सहाबा को जमा किया और हज़रत अली भी आए। हज़रत अली ने फरमाया कि ये कैसा गुनाह है जिसका इर्तकाब एक कौम के सिवा किसी ने नहीं किया, यानी कौम लूत ने, और अल्लाह ने उनके साथ जो मामला किया, तो मेरी भी ये राय है कि आप इनको जला दें, क्योंकि कौम लूत की बस्तियों को ऊपर से नीचे पलटा गया था और वो जल गई थी और राख हो गई थी, जहाँ आज डेड सी है, और उसके पीछे में आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनकी कहानियाँ सूरत आराफ़ से आगे आएंगी। तो बहरहाल इनको फिर जलाने का हुक्म दिया गया, हालांकि मखलूक को जलाने का हुक्म इजाज़त नहीं है, लेकिन ये इतना बुरा अमल है कि जिस पे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत बरती गई। इसी तरह से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि उस मर्द की तरफ अल्लाह ताला रहमत से नहीं देखते जो मर्द या औरत के साथ गैर फितरी फेल करेगा। मर्द के साथ गैर फितरी तो हुआ, औरत के साथ गैर फितरी से क्या मुराद है, तो देखिए कि ताल्लुकात की कुछ हद होती है। एक मर्द भी अपनी बीवी के साथ ये फेल नहीं कर सकता, यानी आगे वाले हिस्से की बजाय पीछे वाले हिस्से में ख्वाहिश को पूरा करना ये गैर फितरी फेल है, इसी को लिवातत कहते हैं। तो इसी तरह आपने मर्द के लिए भी इस चीज़ को पसंदीदा नहीं किया, क्योंकि बाज़ दफ़ा शादी के नाम पे हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि अब हमारी चीज़ है, हम जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो जिसने वो चीज़ दी उसने तरीका भी बता दिया। इसके ऊपर एक आध रिवायात आपसे शेयर करूँगी। हुज़ैमा बिन साबित कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला हक बयान करने में शर्म नहीं करते। क्योंकि हमारे लिए भी ये बातें कहना सुनना मुश्किल है ना, लेकिन क्या करें, अगर ये बातें नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे ये बातें पता चलेंगी। तो अल्लाह के नबी को भी लग रहा है कि ये बातें बयान करना मुश्किल लगती थी, तो कहा कि अल्लाह हक बयान करने से नहीं शर्माते। 3 बार आपने ये बात फरमाई, फिर फरमाया कि औरतों के पास गैर फितरी तरीके से मत आया करो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी का इरशाद है, वो शख्स मलऊन है जो गैर फितरी तरीके से बीवी के साथ जिमा करता है। और इसी तरह अबू हुरैरा ही की रिवायत है कि वो मर्द जो हैज़ यानी पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ जिमा करता है या गैर फितरी तरीके से इसके साथ जिमा करता है या किसी काहिन के पास जाता है यानी फॉर्चून टेलर्स और गैब से मुतल्लक इसकी खबर की तस्दीक करता है, तो ऐसे लोग इस दीन के मुनकर हो गए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो इससे आप देखिए कि कितनी ज़्यादा शिद्दत थी इस मसले में। इसी तरह तारीख में ऐसी होमोसेक्सुअल्स के लिए जो सज़ाओं की आवाज़ें उठी, उसमें बाज़ लोग कहते हैं इनको आग में जलाएं, बाज़ कहते हैं कि शहर की सबसे ऊंची दीवार पे से लेके इनको नीचे धक्का दे रहे हैं, बाज़ कहते हैं शहर की सबसे बुलंद इमारत के नीचे खड़ा करके वो इमारत इनके ऊपर गिरा दी जाए। इसी तरह संसार करने की और तलवार से कत्ल करने की बातें भी हुई। तो आप देखिए कि ये वो दीमक है जिसने आज की नस्लों को चाट लिया है। और वो दौर क्या दौर होगा कि जब किसी भी मज़हब के मानने वाले दीनी रहनुमा इसको लीगलाइज़ कर दें। आप ये इशारा समझ चुके होंगे कि पहले नॉन मुस्लिम्स में भी ये चीज़ थी लेकिन नापसंदीदा समझी जाती थी, लेकिन पिछले 2-4 साल में पहली दफ़ा एक चर्च के प्रीस्ट ने भी इसका इजहार कर दिया कि ना सिर्फ ये कि वो खुद इस चीज़ का शिकार हैं बल्कि वो इस चीज़ को लीगलाइज़ करते हैं। सियासतदानों ने तो पहले किया हुआ था, एक्टर्स और फनकार और गुलूकार और म्यूजिशंस के नाम पे तो ये बातें वैसे ही बहुत थी। आप सोचिए कि अगर हम अपनी औलादों को इन बातों का नहीं बताएंगे तो कैसे वो बात आगे जाएगी। इंसान के अंदर जब उम्र के साथ जज्बात उभरते हैं ना, तो उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने क्यों कहा कि 10 साल का होने पर बिस्तर अलग कर दो, भाई भाई के साथ न सोए, बहन बहन के साथ न सोए, कहाँ भाई और बहन का साथ सोना, ये इसी गुनाह का दरवाज़ा बंद करने वाली चीज़ है। तो अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, निकाह को आसान किया जाए दिन ब दिन और ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। फिर इसमें प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस ये ली जा सकती हैं कि आप अपने बच्चों को कहीं नाइट स्लीप ओवर के लिए मत छोड़ें, वल्ला ही ना छोड़ें, चाहे वो कोई आपका अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, कभी ना छोड़ें। दिन दिन की दोस्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उन्हीं कदमों पर चलना चाहते हैं जिन पर दूसरे चलते हैं। आज हमारे अपने मुल्कों में इस तरह की पार्टीज़ और सलंबर पार्टीज़ और पजामा पार्टीज़ और क्या क्या अजीबोगरीब बेहुदा किस्म के नाम शुरू हो चुके हैं, और आप सोच नहीं सकते कि जब उन चीज़ों की डिटेल्स आप सुने तो घिन आती है। तो बात चाहिए कि जब माँ बाप के अंदर इस चीज़ की शिद्दत का नहीं अंदाज़ा होगा उनको, तो दूसरों को कहाँ से होगा। अब ये दोनों आयतें जो हैं ये बिल्कुल एक किस्म की समझ लें कि इस मसले की इब्तदाई आयात थी। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि बग़ैर वजह के औरत को अगर घर में बंद ही कर दिया जाए तो ये भी एक सज़ा ही है ना। आज के दौर में औरत के घर से निकलने को भी एक बहुत बड़ा इशू बना लिया जाता है। तो यहाँ तो देखिए कि सज़ा के तौर पे एक औरत को घर के अंदर रोकने की बात की गई है, और अगर बिल्कुल ही औरत को आप घर के अंदर बंद कर देते हैं तो वो भी एक किस्म की सज़ा ही बन जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़ भी इससे पता चलती है कि निप द ईवल इन द बट, बुराई को उसकी जड़ पे ही रोक लो, अगर ज़रा सी वो फैल जाएगी, क्योंकि जब शोहरत बुरी हो जाती है ना तो फिर उसके बाद एक इंसान जो है बद से बदनाम बुरा वाली कैफियत में आ जाता है। और यहाँ ये आयत नाजिल हुई इसके कुछ अरसे के बाद ही फिर वो आयत नाजिल जब हुई सूरत नूर की, जिसमें 100 करोड़ों की सज़ा की बात है, बिल्कुल पहली दूसरी दो आयतें जो हैं सूरत नूर की, तो उस वक़्त सहाबा कराम को ये बात समझ आ गई थी कि औ यज अलहुन्न सबीला से क्या मुराद है। और जब वो आयतें नाजिल हुई तो उन्होंने ये कहा कि अब अल्लाह ने दूसरी सबील निकाल दी। और इस लफ्ज़ से भी पता चलता है कि ये वक्ती हुक्म था, सबील का हुक्म जो था वक्ती था। अब इसको अपनी समझ बूझ के साथ जैसे भी अपने ऊपर अमल में हम भी ला सकते हैं। बस आज देखिए इस्लामी निज़ाम हुकूमत हमें नहीं दिखता, ठीक है शायद सऊदी अरब में होगा प्रैक्टिकली, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी मुझे दूसरे मुल्कों का नहीं पता। अब वहाँ अगर ऐसी चीज़ें देखी जाएँ तो क्या किया जाए, यानी बीवी बीवी अपने शोहर को देख ले, शोहर बीवी को देख ले, या किसी के बच्चे का आपको स्कैंडल पता चल गया, या कोई ऐसे कहानी है तो उसके ऊपर एक ही बात है कि खामोश रहिए। आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं जिस पे आप लोगों को सजा दिलवा सकें। बात बाहर करेंगे तो कहते ना कि गुनाह से बुरी जो होती है वो गुनाह की शोहरत होती है। ऐसे लोगों की ज़ाती इसलाह की कोशिश करें। खुदा नखास्ता अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा वाक़या हो चुका है अपना किसी का माजी का हाल का, सीधा अल्लाह के दर में जाएं और तौबा कर लें। इसी का तذکرہ अगली दो आयतों में है जो इस टॉपिक के साथ आने की हिकमत आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما